نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محسن انسانیت اس میں سے مدنی دور میں سے آج ہم نیا ٹاپک شروع کریں گے یہود کا پیدا کردہ پانچواں کالم اصل میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیلنجز پیش آئے تھے مدینہ میں آنے کے بعد اس کو دیکھ رہے ہیں اس سے پیچھے ہم نے سب کچھ کور کیا کہ کیسے آپ نے وہاں کی اکانومی کو سیٹ کیا مواخات کا معاملہ شروع ہوا پھر اس کے بعد کشمکش کا ہم نے ایک طویل ٹاپک پڑھا کہ آپ نے کس طرح اس سوسائٹی میں مختلف لوگوں کو ایک جگہ جوڑا پھر اس میں ہم نے مالی طور پہ مسلمانوں کو جو تکلیفیں سہنی پڑیں اس کو دیکھا آج ہم پڑھیں گے منافقوں کے بارے میں اسی میں کھچاؤ کی باتیں ہوئیں شائلانہ رویہ ہوا تو ہم دیکھیں گے کہ دین پہ آنے کے بعد کیا کیا قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور یہاں میں چھوٹی سی بات اپنے آپ کو اور آپ کو بھی کہوں کہ وہ یہیں سے پلٹ جائے جسے جہاں ہو بیاری اللہ کا راستہ مشکلوں کا راستہ ہے نفس کے اوپر چوٹ پڑنے کا راستہ ہے خواہشوں پہ چلنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن خواہشوں کے خلاف اللہ کے ارادوں اللہ کی مرضی پہ چلنا بہت مشکل ہے یہ قرآن آپ کو مجھے اسی کی طرف لے کے چلتا ہے تو جب بھی ہم سچے دل سے اللہ کے دین کی طرف آئیں گے رکاوٹیں بھی آئیں گی مشکلات بھی آئیں گی اور ایک ایسا انٹرفیس آ جاتا ہے بیچ میں کہ جس کے بعد پھر انسان کو سمجھ نہیں آتی کروں تو کیا کروں جو کر رہا تھا وہ سب غلط نظر آتا ہے لیکن جو نہیں کیا ہوتا وہ کرنا مشکل لگتا ہے تو پھر یہ سیرت کی چیزیں آپ کے میرے لیے ایسے وقت میں ان شاء اللہ تعالیٰ ایک نشان منزل بن کے یا ایک ایسی روشنی بن کے ہمیں دکھائیں گی کہ ہم نے آگے سے کیا کرنا ہے تو آئیے پڑھتے ہیں کتاب میں سے یہود کا پیدا کردہ پانچواں کالم یعنی وہ لوگ جو اسلام پہ آ بھی جاتے تھے یہود ان سے بھی مایوس نہیں ہوتے تھے کہ چلو بھی اب یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں نہیں پھر ان کے دل میں ایسے ایسے وسوسے ڈالتے ڈاؤٹس ڈالتے ان کو اس طرح سے مشکلات میں ڈالتے یعنی ان کے ذہنوں میں ایسے سوال کھڑے کرتے کہ جس کے بعد واقعی وہ شک کا شکار ہو کر پلٹ جاتے اور اس پلٹنے کی مثال غزوہ احد کے موقع پہ اپنی ایکسٹریم پہ پہنچی ہوئی تھی آئیے اس کو پڑھتے ہیں تاریخ انسانی کے صد ہا تجربات صد کہتے ہیں سو کو یعنی سینکڑوں کے تجربات اس حقیقت کی شہادت دیتے ہیں کہ اخلاص کی روح اپنے اندر لیے جب کوئی دعوت خیر اور فلاح فاتحانہ اقدام کرتی ہے تو اس کے مقابلے پر آنے والی رد عملی طاقتوں میں سے ایک وہ ہوتی ہے جو روح در روح سے ٹکر لیتی ہے اور وقت کی تلواریں بے نیام کر کے آخر دم تک مقابلہ کرتی ہے مگر ایسے فاسد عناصر جو اخلاقی پستی کی وجہ سے بزدلی اور کمینگی کی سطح پر گر چکے ہوتے ہیں وہ نفاق کی کمین گاہ میں بیٹھ کر ریشہ دوانیاں یعنی سازشیں کرنے لگتے ہیں مشرکین مکہ کی رد عملی حرکت پہلی نوعیت کی تھی مگر مدینہ کے یہود اور ان کے ہم نواؤں نے دوسری پوزیشن اختیار کر لی لفظ چونکہ مشکل ہیں کبھی ہو سکتا ہے آپ کو کوئی لفظ سمجھ نہ آیا ہو تو خلاصہ کیا ہے اس کا کہ جب بھی حق کی آواز اٹھی تو اس کے مقابلے میں ضرور رد عمل اٹھا یہ لکھ لے اخلاص کے ساتھ جب ایک بندہ اللہ کے راستوں میں آتا ہے تو اللہ اس کو خوب چھان پٹک کے دیکھتے ہیں مختلف طریقے سے ان کو پرکھا جاتا ہے دیکھنا یہ مقصود ہوتا ہے کہ یہ اپنی جگہ پہ سچا ہے کہ نہیں ہے مکہ والوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی بٹ وہ سر عام مخالفت تھی سامنے آ کے مخالفت کرتے تھے لیکن مدینہ میں یہود نے آپ کو کچھ ایک ایسے حالات سے دوچار کر دیا کہ جس کو کہیں کہ پیٹ پیچھے سے وار کرنے والی کیفیت تھی تحریک اسلامی اب چونکہ ایک ریاست کی صورت اختیار کر گئی تھی اور یہ ریاست سب کی آنکھوں کے سامنے نشو و نما پا رہی تھی اور چاروں جانب سے بیدار دل اور متحرک اور عمل کو پسند کرنے والے افراد کو چن چن کر اپنے ساتھ لے آ رہی تھی اس کو ہائی لائٹ کریں ہمیشہ نبیوں کا ساتھ ایسے ہی لوگوں نے دیا کل نبی تھے آج حق بات کرنے والے کون لوگ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں جن کے دل زندہ ہوتے ہیں جو واقعی اپنے اندر ایک جذبہ رکھتے ہیں لیکن جو لوگ کچھ کر نہیں رہے ہوتے نا تو وہ روڑے اٹکاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا لہذا مخالف طاقت حسد اور احساس کمتری کے خوفناک رد عمل کا شکار ہوتی جا رہی تھی مگر دلوں ہی دلوں میں جو ابال تھا اس کے لیے بہاؤ کا کوئی راستہ نہ تھا حالات پر اثر اندازی کی کوئی صورت ممکن نہ تھی نظریہ اسلامی کے مقابلے میں یہود کے پاس کوئی معقول سیدھا سادہ عوام کو اپیل کرنے والا اور حرکت پیدا کرنے والا تعمیری نظریہ نہ تھا ان کے پاس کچھ بے جان اور کھوکھلے عقیدے تھے جو الٹا تاریخ کے بہاؤ کو روکنے والے اور انسانی فطرت میں جمود پیدا کرنے والے تھے इनके पास तहरीक इस्लामी के पैदा करदा अखलाकी किरदार के जवाब में बराबर की टक्कर का अखलाकी किरदार ना था, ये नोट कीजिए। जिसको आप कहते हैं ना लोहे को लोहा काटता है, तो याद रखिए किसी कौम के पास सबसे बड़ा हथियार अखलाकी पुख्तगी है। जैसे आप अपने ऊपर लें, आपका अखलाक बुलंद है ना, यानी आप नरम हैं, आप सच्ची हैं, आप खिदमत गुजार हैं, दुश्मनों में भी गिर जाएंगी ना तो आप बच जाएंगी। बाज़ दफ़ा बच्चियां ऐसे ऐसे माहौल में भेज दी जाती हैं कि वहां सारे दुश्मन होते हैं, कोई बात नहीं करना पसंद करता, लेकिन इखलाक बुलंद होता है ना तो वो बच्चियां अपनी जगह बना लेती हैं। तो याद रखिए कि आज उम्मत मुस्लिमा में किरदार साजी की इसलिए भी बहुत ज़रूरत है, बल्कि वो किरदार के लिहाज से इंसानियत के कम से कम मतलूबा मेयार से भी गिरे हुए थे और कोई मुहर्रिक ना था। मुहर्रिक कहते मोटिवेशन देने वाली चीज को, जो इनको इस पस्ती से उठा सके। इंसानियत की तामीर नो की कुरानी दावत जो नया इंसान बना के लाई थी, यहूदियत का पुराना नमूना इंसानियत इनके सामने खड़ा होने के काबिल ना था। प्रोपेगंडे के मैदान में गलत फहमी और शरारतों का कितना ही गर्दो गुबार वो उड़ाते फिरे, लेकिन इस्तदलाल के मैदान में, यानी जब बात करनी पड़ती तो उनके पास दलील कोई नहीं होती थी, तो इस्तदलाल के मैदान में जिक पर जिक उठा रहे थे, फिर वो अपने आप को चाहे कुछ समझते रहे। तारीख की ताकत मुस्लिम तहरीक के साथ थी और वाकियाती पेकार गाह में यहूद पर हर हर आन कारी जरबें पड़ रही थी। जमाना इनको पीछे छोड़कर इस्लामी नजरिया हयात का झंडा लहराता आगे ही आगे बढ़ा जा रहा था। सियासी लिहाज से वो चाहते थे कि इस्लामी इनकलाब की शाहरख काट डालें, लेकिन हलीफाना मुआहदात ने इनके हाथ बांध रखे थे। इस वाकियाती नक्शे में घिर कर वो अपने आप को बेचारगी और बेबसी के मुकाम पर पाते। बेचारगी और बेबसी के इस एहसास ने इनकी सीरत की बुनियादी कमजोरियों के साथ मिलकर बुजदिली का रंग इख्तियार कर लिया था। बेबसी और बुजदिली के आलम में इन आदमी के अंदर काम करने वाले हरीफाना, हरीफ क्या होता है, दुश्मन, दुश्मनी के जज्बात हमेशा हसद और कीने की राह से इसे निफाक की कमीनगाह तक ले जाते हैं। कमीनगाह क्या होती है, जहां खड़े होकर कुछ शिकार करता है। वो मुखालिफ पर सामने से वार करने की बजाय पीछे से शब खून मारता है। शब खून क्या होता है, रात को छुप के हमला करना। वो खुल्लम खुल्ला ताकतो ताराज की बजाय नकब जनी की स्कीमें बनाता है। यहूद ने भी इसी बुजदिलाना मौकफ को संभाल लिया। खुलासा क्या है, खुल के सामने आते हैं बहादुर, पीछे साजिशें करना, छुप छुप के बातें करना, ये बुजदिलों की बात है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन लोगों से वास्ता था वो इसी किस्म के लोग थे। मुनाफिकीन के जलील अंसर के जहूर के लिए वाकियाती सूरत हाल ने दो असबाब पैदा कर दिए थे। एक तो वही यहूद और इनके हम नवाओं का हासिदाना इंतकामी जज्बे बरसरे अमल था, और इस जज्बे में चूंकि बराह रास्त हमला करने की ताकत नहीं थी, इस वजह से निफाक का खुफिया महाज बरसरे अमल आ गया। यानी आप कह लें कि इन सारी चीज़ों से निफाक पैदा हो गया। मुनाफिक होता ही वो है ना जो बुजदिल होता है, जो खोल के अपने बातों को सामने नहीं ला पाता, तो वो ढके छुपे फिर अंदर में कुछ बाहर कुछ और इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करता है। दो असबाब क्या थे, एक तो वही यहूद और इनके हम नवाओं का हासिदाना इंतकामी जज्बा बरसरे अमल था, और इस जज्बे में चूंकि बराह रास्त हमला करने की ताकत नहीं थी, इस वजह से निफाक का खुफिया अमल बरसरे अमल आ गया। दूसरा सबब यह था कि इस्लाम की बढ़ती हुई ताकत को देखकर बहुत से लोग अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए इसी चोर दरवाजे से अंदर दाखिल होने लगे। इस चोर दरवाजे का इफ्तिताह बहरहाल यहूदी जहन ने किया। इनके अच्छे अच्छे सरदार थे जो इस्लामी जमात की सफ़ों में अपने हरीफाना जज्बात को इस्लाम के बहरूप में छुपाए हुए दाखिल होने लगे। बनी कैनका से नुमाया मरतबे के हसबे जैल बुजुर्ग पांचवें कालम के तौर पर दौरे इस्लाम में दाखिल हुए। क्या समझ आई है, ये हैं वो बड़े लोग जो आप कह लीजिए कि निफाक की चोटी पे थे। इन्होंने बज़ाहर इस्लाम कबूल कर लिया था लेकिन दिल में कुफर था। असद बिन हुनैफ, जैद बिन लसीत, नौमान बिन औफा बिन इब्ने अमर, राफे बिन हरेमला, रुफाया बिन जैद बिन ताबूत, सिलसिला बिन बरहाम और कनाना बिन सूरिया, यानी साद इब्ने हुनैफ, जैद बिन लुसैद, नौमान बिन अबी औफा बिन अमर, राफे बिन हुरैमला, रफाया बिन जैद बिन ताबूत, सिलसिला इब्ने बरहाम और कनाना इब्ने सूरिया। इनमें से जैद बिन लुसैद वो शख्स है जो बनी कैनका के बाजार में हजरत उमर से नबरदाजमा हो गया, यानी उनसे मुकाबला करने लगा। फिर यही शख्स था जिसने रसूलुल्लाह की ऊंटनी के खो जाने पर ताना दिया था कि यूं तो आसमान की खबरें देते फिरते हैं लेकिन इतना पता नहीं कि ऊंटनी इस वक्त कहाँ है। इसके जवाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, बखुदा मेरा हाल ये है कि मैं बजुस इसके कुछ नहीं जानता जो कुछ के अल्लाह ताला मुझे बता दे। और अब अल्लाह ताला ने मुझे उठनी के बारे में इत्तला दे दी है। याद है आपको एक मौके पे आपकी उठनी गुम गई थी, उसकी तरफ इशारा। सो वो इस वादी में हर एक दरख्त के साथ इसकी बाग उलझ गई है। चुनाचे रुफका तलाश को गए तो बिल्कुल यही सूरत हाल आंखों से देखी। क्या पता चला कि अल्लाह के नबी को अल्लाह गैब कब बताता था? जब बताता था, और जितना बताता था तो अल्लाह के नबी को भी गैब खुद से नहीं पता होता था। तो उसने एक ताना दिया लेकिन अल्लाह के नबी इस पर शर्मिंदा नहीं हुए। तो ये आपके मेरे लिए भी सबक है। कभी भी कोई आपसे किसी बात पे कहे ना कि अच्छा जी आप तो ये नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते, हमारी इससे ज्यादा की हद नहीं है। तो आप जब बहुत ज्यादा उछल उछल के अपने पाँव खड़े करते हैं तो वो चीज़ फिर आपको नाकाबिले तस्खीर बनाकर पेश करना, ये चीज़ फिर इंसान को बार दफा मुश्किल में डालती है। फिर दूसरा शख्स है रुफाया बिन हुरैमला। रुफाया बिन हुरैमला का मुकाम निफाक इतना बुलंद था कि जिस दिन वो मरा तो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज मुनाफिकीन के सरखैलों में से एक सरखैल मर गया, यानी बड़े बड़े लोगों में से लीडर। सरखैल कहते हैं वो बंदा जो दूसरों को भी पीछे लगाए। खैल कहते हैं घोड़े को, सर वही है जो सर होता है आगे। राजे के दूसरों को भी अपने पीछे लगाने वाला एक शख्स मर गया। ऐसा ही मुकाम रुफाया बिन जैद बिन ताबूत का था। चुनाचे गजवा बनी अल मुस्तलक से वापसी पर तूफान सरसर उठा और लोग कुछ घबरा गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली देते हुए फरमाया कि ये तूफान मुनाफिकीन के एक सरखैल को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए मुतहरिक हुआ। लोग मदीना पहुंचे तो मालूम हुआ कि रुफाया की रूह इस तूफान की लहरों के साथ परवाज कर चुकी है। अच्छा आप नोट करिएगा, अल्लाह सबको बचाए निफाक से। मुनाफिकों का अंजाम बहुत बुरा होता था। बड़े से बड़े मुनाफिक को देख लीजिए किस तरह से ये दुनिया से गए। तो जिंदगी में थोड़ी बहुत इज्जत बन भी गई तो क्या भी, तो अपने लिए दुआ करें अल्लाह में इखलास दे, हमें इस्लाम की सच्चे जज्बे से खिदमत करने वाला बना। दिलचस्प हकीकत यह है कि मुनाफिकीन की सफों में जितने भी लोग शरीक हुए सब के सब पुख्ता साल और खुशहाल लोग थे। ये भी नोट कीजिएगा, ज्यादा पैसा बंदे के दिल में निफाक कभी कभी भरता, क्योंकि हर ख्वाहिश जो पूरी हो रही थी तो लगा कि हम सब कुछ कर सकते हैं। इनके सामने मुफाद थे और इनके मिजाज बिल अमूम गलत जज्बात के सांचे में ढलकर पत्थर की तरह सख्त हो चुके थे। नौजवान ताकत तहरीक इस्लामी के साथ थी। बरूए तहकीक सिर्फ एक नौजवान पांचवें कालम में मिलता है जिसका नाम कुस बिन अमर बिन साहल था। ये ग्रुप इतना ही महदूद ना था बल्कि दर हकीकत ये चंद हजरात तो पांचवें कालम के कायद और सालार थे। ये अपने हलकों से मुनाफिकीन भर्ती भी करते, इस्लामी जमात के अंदर से कमजोर अफराद को तलाश कर करके इनको मुतासिर भी करते और इनको इस्तेमाल में लाते, शकूक व शुबहात फैलाकर और मुसलमानों की मजलिसों में संजीदा मामलात में मजाक करना और तानो तशनी के पहलू पैदा करके फिजा को खराब करने के दर पे रहते। मस्जिद में जाकर तमाम अहम गुफ्तगुएं सुनते, फिर आकर अपनी मजालिस में रिपोर्ट करते। रातों को सासी मजालिस में बैठकर शरारत के नए मनसूबे बनाते और नए नए तरीकों से इनको रूब अमल लाते। यूं तो अपने अंदाजो अतवार की वजह से निफाक का पैदा करदा ये बेढंगा किरदार नबी अकरम और मुसलमानों की निगाह में पहचाना जाता था और इसके साथ हर मरहले पर वही इलाही की रोशनी, इनके ख्यालात, इनकी हरकत और इनकी कार्रवाइयों और साजिशों, बल्कि इनके मुजरिमाना जमीर की खास खास अलामात को नुमाया करती रहती थी। लेकिन एक मौके पर मस्जिद नबवी में इन अकाबरीन, अकाबिर कहते हैं बड़े को यानी निफाक के बड़े, अकाबरीन निफाक की हरकत हद बर्दाश्त से बाहर हो गई। मजमे आम में ये टोली की टोली बिल्कुल अलग धड़ा बनी बैठी थी और अपनी जगह अलग खुसर खुसर कर रही थी। ये मंजर देखकर सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मस्जिद से निकल जाने का हुक्म दिया। बास बुजुर्ग तो ऐसे हटीले थे कि इनको पा बे दस्तो गिरे दस्त बदस्त दगरदे की शान से निकाला गया, यानी उनको बहुत ही मुश्किल मतलब उन पाँव पकड़ के किसी को निकालना। लेकिन इन बड़े लोगों का यानी इन बड़े बड़े मुनाफिकों की खुद अपनी मरकजी क्यादत अब्दुल्ला बिन उबई की ज़ात ग्रामी में मुर्तकिस थी। मुर्तकिस समझते हैं, जुड़ी हुई थी। ये शख्स जो वाकई इफ्क में फितने की बारूद को फतीला दिखाने वाला, फतीला क्या होता है, वो तीली जिससे आग लगती है ना, एक धज्जी सी लेकर तो कपड़े की या फिर वो धागे की तो उससे आग लगाते हैं, उसकी तरफ इशारा है। लेकिन इन बड़े बड़े मुनाफिकों की खुद अपनी मरकजी क्यादत अब्दुल्ला बिन उबई की ज़ात ग्रामी में मुर्तकिस थी। ये शख्स जो वाकई इफ्क में फितने की बारूद को फतीला दिखाने वाला हीरो था, इसकी रग रग में इस्लामी इनकलाब के खिलाफ बुग़्ज़ो कीने का आतशीन लावा भरा पड़ा था। इस लाइलाज बुगज व कीना की बुनियाद क्या थी, ये उसैद बिन हुज़ैर की ज़ुबानी सुनी है जिन्होंने गजवा बनी मुस्तलक के मौके पर अब्दुल्ला बिन उबई की एक शर अंगेजी पर तबसरा करते हुए कायदे इंसानियत की खिदमत में अर्ज किया, या रसूलुल्लाह इस शख्स के दुखी जज्बात की रायत फरमाएं। मदीना में जब आपका वरूद हुआ, वरूद मीन आप आए, तो इस मौके पर हम इसको बादशाहत की मसनत पर बिठाने की पूरी तैयारियां कर चुके थे। इसके लिए ताज तैयार हो रहा था और आपकी आमद से इसका बना बनाया खेल बिगड़ गया। बेचारा इसी की जलन निकाल रहा है। जिन लोगों के बने बनाए खेल किसी दावत या तहरीक के हाथों बिगड़ जाते हैं और जिनके मुफाद की कमन ऐसे आलम में टूटती है कि सामने दो चार ही हाथ पर लबे बाम होता है, वो फिर अपने सीने में बस भरे सारी उम्र पैचोताप खाते रहते हैं। ऐसे शिकस्त खुर्दा हरीफ कभी मुआफ नहीं किया करते। इस्लाम के बारे में भी यही कैफियत थी, जिसमें अब्दुल्ला बिन उबई अव्वल रोज से मुबतला हो गया था और मरते दम तक इसी में मुबतला रहा। अव्वल अव्वल इस्लाम ले आया ताकि इस नई ताकत के निज़ाम के अंदर अपनी जगह बना सके और फिर इसके अंदर से कदम कदम ऊपर उठकर क़यादत व इक्तदार की चोटी तक पहुंच सके। लेकिन इस निज़ाम के अंदर से तो जिधर भी कोई रास्ता जाता था वो ईमान और अमल के बल पर तय होता था। सो अब्दुल्ला बिन उबई के लिए निफाक के सिवा कोई दूसरा मुकाम न था। इब्तदान ये निफाक छुपा रहा, लेकिन एक दिन अचानक इसके दिल का नासूर फटा और गंदा मुतफ़न मादा बहने लगा, यानी ऐसा मादा जिसमें से बू आ रही है। हुआ ये कि हजूर पाक साद बिन उबादा की बीमार पुरसी के लिए तशरीफ ले गए। हजूर गधे पर सवार थे और अपने पीछे आपने उसामा बिन जैद बिन हारिसा को बिठा लिया था। यही उसामा बताते हैं कि रास्ते में एक जगह अब्दुल्ला बिन उबई मजलिस जमाए बैठा था। इसके गिर्द कबीले के लोग हल्का जन थे। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ तो इसे बुरा लगा और मुंह फेर लिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब पहुंचे तो सलाम कहा, फिर जरा देर के लिए रुके और कुरान का कुछ हिस्सा पढ़ा और अल्लाह की तरफ दावत दी, खुदा की याद दिलाई और इसके गजब से डर दिलाया। उसामा कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन उबई दम सादे बैठा रहा, कोई बात नहीं की, लेकिन जब हजूर बात से फारिग होकर चलने लगे तो बड़े गुस्ताखाना और बाजारी से अंदाज में मुंह फाड़ के कहा, कै फुला बात करने से तेरा ये ढंग ठीक नहीं, अपने घर में बैठ और कोई जो तेरे पास आए बस तो उसको अपनी बात सुना दिया कर। अपने ऊपर लें जरा, आप जाएं कहीं कोई बात करने और लोग अपने घर बैठ के दर्स दें जो आपके पास आए, इधर आने की जरूरत नहीं है, कितना हमें बुरा लगे हैं। और जो कोई तेरे पास ना आए इसे तंग ना किया कर और इसके घर में आकर ऐसी दावत ना सुना के जो इसे ना गवार हो। मैं अक्सर सोचती हूँ कि नबी सल्लम को इतने बड़े बड़े जुमले सुनने पड़े अल्लाह के रस्तों में। हम तो जरा सी बात सुन के हिम्मत हार देते हैं, हम कहते हैं छोड़ो ना, अब हम और कहाँ सुने, हमसे बातें नहीं सुनी जाती। अच्छा, हम अल्लाह का दीन सुनना छोड़ देते हैं बातें सुनने के डर से। हालांकि उनका हाल क्या था कि वो अल्लाह के इस दीन के ऊपर अपने आप को जमा लेते थे, कोई बातें करता है तो करे। याद रखिए एक बात, आपने आज के सबक में भी पढ़ी है, अल्लाह का इरादा है कि आपको रास्ता दिखाए, सीधा तौबा कबूल करे, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाए। इसके बरक्स माशरे में ख्वाहिशात फैलाने वाले लोग होते हैं जो इंसान को अल्लाह के रास्ते पे चलने नहीं देना चाहते। अल्लाह आसानियाँ चाहता है। मैं कल का सबक पढ़ाने के बाद घर गई तो मैंने सोचा, हमने इतनी खूबसूरत तौबा पे आयतें पढ़ी हैं कि अल्लाह माफ़ करता है, अल्लाह इतना करता है, तो कितनी उम्मीद लग जाती है कि देखना अल्लाह आपने मुझे तो ज़रूर ही माफ़ कर देना। तो जब आप पूरा कुरान पढ़ते हैं ना, एक दिन रोते हैं तो एक दिन हंसते हैं, एक दिन डरते हैं, एक दिन आप अदा से कहते हैं कुछ नहीं होता, मेरे अल्लाह ने मुझे बख्श देना, है ना। कि जैसे वो एक बद्दू था तो नबी सल्लम के पास आया और सारा कुछ पूछने लगा, बातें सुनी, कहने लगा ये बताएं कि क्यामत के दिन हिसाब कौन लेगा। कहा अल्लाह ताला लेगा। कहते अल्लाह लेगा, फिर मैं बच जाऊंगा, फिर मैं बच जाऊंगा, ये कहते कहते खुशी खुशी में चला गया। तो याद रखिए हमारा रब हमसे मेहरबान है, लेकिन जब हम कोशिश करेंगे और गलतियां भी करेंगे अल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन ढीठ पने पे आ जाना और इस चीज़ की तरफ कदम ना उठे इंसान के, तो फिर तो आप देख लीजिए दुनिया में नहीं ऐसे होता, आखिरत में तो ये मामला और भी सख्त होगा। तो खैर, ऐसी बातें आपने सुनी और चुप कर गए। देखिए इन अल्फाज को, परखिए इस अंदाजे बयान को, लफ्ज लफ्ज जहर में बुझा हुआ है और हर्फ हर्फ से सड़ांध उठ रही है। कितने दिल छेदने वाले बोल हैं, कितने गुस्सा दिलाने वाले जज्बात हैं। दरहकीकत ये अब्दुल्ला बिन उबई नहीं बोल रहा था, ये जाहिलियत का मिटता हुआ दौर था जो आने वाले दौरे अमन और आफियत के खिलाफ दिल की भड़ास निकाल रहा था। और हजूर ने अपने मुकाम की बुलंदियों से पस्ती की इस बड़बड़ाहट को सुना। इस करीमुन नफ्स हस्ती को गुस्से की बजाय अगलबन रहम ही आया होगा। अगलबन क्या कहते हैं, यानी गालिब भी है ये बात, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मोस्ट प्रोबेबली, रहम ही आया होगा। ये भी देखिए अल्लाह के नबी में अगर इतना सब्र और बर्दाश्त ना होता तो कभी सहाबा की ये जमात ना तैयार होती। मजलिस में अब्दुल्ला बिन रवाहा भी मौजूद थे जो मुस्लिम जमात के रुकन थे। इनकी गैरत ने अपना फर्ज अदा किया और उन्होंने मुनाफिक आजम को तुनक कर जवाब दिया, हजूर क्यों ना आए, हम आपको चाहते हैं, आप हमारे घरों और हमारी मजलिसों में आए, हम आपसे मोहब्बत करते हैं और आप ही के वसीले से अल्लाह ने हमें सरबुलंदी अता फरमाई और आप ही के ज़रिए से हिदायत अता की है। इस तजर्बे से गुजरने के बाद कायदे इंसानियत साद बिन उबादा के हाँ पहुँचे। उन्होंने चेहरे का एक ख़ास रंग देकर सवाल किया। आपने वाक़या बयान किया, साथ ने भी वही वाक़याती पस मंज़र बयान किया कि अल्लाह ताला आपको मदीना ले आया, वरना हम इसके लिए ताज तैयार कर रहे थे। आपने तो आकर इसकी बादशाहत का ख्वाब दरहम बरहम कर दिया। मुद्दा ये था कि इसका रद्द अमल कुदरती है, इसे कुछ अहमियत नहीं देनी चाहिए। यह शख्स निफाक के पूरे ड्रामे का मरकजी हीरो बनकर तारीख के स्टेज पर काम करता रहा। सबसे आगे ये था, इसके पीछे मोटे मोटे यहूदी बुजुर्ग थे, इनके पीछे शौरी तौर पर निफाक का खेल खेलने वाले अवाम थे, इनके पीछे अध कचरे और थुड़ दिले मुसलमान थे, और सबसे आखिर में जाहिल और ना समझ बदवी थे। तहरीक इस्लामी के खिलाफ जो भी रद्द अमली हरकत नमोदार होती थी, इसमें दर्जा बदर्जा इन मुख्तलिफ अनासिर का हिस्सा होता था। मदीना में मुस्लिम जमात जिन जिन मुखालफतों और मुजाहमतों से दो चार हुई और सरवर आलम को जिन जिन शरारतों के तूफानी रेलों का सामना करना पड़ा, इन सब में यहूद के जेर असर निफाक की इस फासद ताकत का बड़ा भारी पार्ट शामिल रहा है। कमांड अगरचे सारे महाजे मुखालफत पर यहूद की रही, लेकिन जितने भी मनफी फितने मुसन इंसानियत का रास्ता रोकने के लिए उठे, इनमें अमलन बहुत बड़ा हिस्सा मरीजान निफाक का था, जो यहूद के आलाए कार बनकर काम करते रहे। तो सारी बात का खुलासा समझ गए आप। जो लोग दीन इस्लाम को नुकसान देना चाहते हैं ना, तो उन लोगों को हिट पे ले लेते हैं जो भी इस्लाम में पुख्ता नहीं होते। सबसे पहले डाउट्स पैदा करते हैं, शक पैदा करते हैं, फिर जिस रास्ते पे चल रहे हो ये ठीक रास्ता नहीं है, इसकी कोशिशें करते हैं कि ये एहसास पैदा हो जाए, और आहिस्ता आहिस्ता उनको ऐसे फील कराते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही चले गए हो आगे। तुमने इस नबी के नाम पर अपने घरों को किस तरह रखा। आप देखिए ना, जो बातें हम नबी सल्लम के बारे में सुन रहे हैं अब्दुल्ला बिन उबई की, ये कोई सुन सकता है? और आपने ये सुनी सहाबा को, तो ये हर वक्त सुननी पड़ती थी। चलो अल्लाह के नबी को तो उसने कभी कहा तो आपने सुन ली और वो बातें रिकॉर्ड में आ गई, आम सहाबा को तो ये बातें हर वक्त सुननी पड़ती थी। तो आज के इस टॉपिक से मेरा आपका अमल क्या है, लोगों की बातों की परवाह छोड़ें। मैं खुद अपने ऊपर भी लेके इस चीज़ को कहूँगी और आप भी लें। जिस वक्त मेरी जान जाएगी मेरे साथ कौन होगा, जब मुझे नहलाएंगे कफनाएंगे और दफनाएंगे कौन मेरे साथ होगा, कब्र में जब मैं जाऊंगी और मेरे से सवाल होंगे मुनकर नकीर के जरिए से, उस वक्त मेरे पास कौन होगा। या तो लोगों से आप ये कहें ना कि आप हमारी गारंटी ले लें, सीधा जन्नत के अंदर छोड़ के आए ना तो फिर तो हम गारंटी लेते हैं। तो ये तो बड़ा पीर मुर्शद नहीं कह सका कि मैं तुम्हें जन्नत के अंदर भेज दूंगा, तो मैं और आप तो आम लोग हैं। दुआ कीजिए कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। और कसरत से दुआ पढ़े। आप मत सोचें कि आप कुरान की तरफ आ गए तो बहुत सिक्योर्ड है, आप शैतान प्रूफ हैं, आप जहन्नम प्रूफ हो गए। नहीं, कदम कदम पे शैतान आपके सामने ऐसा दिल में ख्याल डाल देगा आप उलझ के रह जाएंगे। तो अल्लाह ताला हमें नफ्स की शरारतों से भी बचाए। यहाँ पे रुकेंगे इंशाल्लाह। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।